लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, अमानवीय जीवन परिस्थितियों में हाशिए पर जीवन यापन करने वालों के लिए हम आपसे याचना करते हैं, ताकि सरकारी, गैर सरकारी और कलीसियाई संस्थाओं द्वारा उनकी अनदेखी न की जाए और न ही उन्हें कम महत्व का समझा जाए। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम पर चर्चा कर रहे हैं। संत पापा फ्रांसिस ने सामाजिक धर्म शिक्षा की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान विश्व में नवीन सुसमाचार प्रचार के संबंध में प्रेरितिक प्रबोधन एवंजेली गौडियम प्रकाशित किया। 24 नवंबर सन 2013 को प्रकाशित किए गए अपने इस प्रेरितिक प्रबोधन में संत पापा फ्रांसिस पूरी कलीसिया से यह आग्रह करते हैं कि हम सभी ख्रिस्तीय अपने जीवन में सुसमाचार के एक नए अध्याय की शुरुआत करें। वे कलीसिया को शिष्यों का एक समुदाय घोषित करती जो सदैव प्रेरिताई के कार्य हेतु बुलाई गई है। एवंजेली गौडियम संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्षीय काल के विशेष मुद्दों पर प्रकाश डालता है, जहां हम ख्रिस्तियों का गरीबों के प्रति कर्तव्य, आर्थिक, राजनैतिक और अन्य कानूनी बातों के संबंध में उत्तरदायित्व का जिक्र पाते हैं। वे सामाजिक प्राथमिकताओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कराते हैं। श्रोताओं, हमने एवंजेली गौडियम के 5वें अध्याय की शुरुआत की है, जो पवित्र आत्मा से पूर्ण सुसमाचार प्रचारकों का जिक्र करता है। सुसमाचार प्रचार करना ईश्वर के राज्य को विश्व में प्रकट करना है। हम सभी अपने जीवन के द्वारा जीवनदायी ईश्वर की सुसमाचार का प्रचार करने को बुलाए गए हैं और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा अच्छे कार्यों का निष्पादन हम में व्याप्त अच्छाई का परिणाम नहीं, अपितु पवित्र आत्मा की प्रेरणा है, जहां वे हमें हृदय की गहराई में नेक कार्य करने को उत्प्रेरित करते हैं। हमने अपने विगत प्रसारण में पुनर्जीवित यीशु और पवित्र आत्मा के रहस्यात्मक कार्यों का जिक्र किया। श्रोताओं, विश्वास करने का अर्थ ईश्वर में आस्था रखना है, इस बात पर विश्वास करना कि वे हमें सचमुच प्रेम करते हैं, कि वे जीवित हैं, कि वे आश्चर्यजनक रूप से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करने के योग्य हैं, कि वे हमारा परित्याग नहीं करते हैं। वे अपनी शक्ति और दिव्य सृजनात्मकता में हमारे जीवन की बुराइयों से अच्छाइयों को उत्पन्न करते हैं। इसका अर्थ इस बात पर विश्वास करना है कि वे विजेता के रूप में उनके जीवन में चलते हैं जो बुलाए, चुने गए और विश्वासी हैं। हम सुसमाचार के वचनों में विश्वास करें जो हमें कहता है कि ईश्वर का राज्य पहले से ही हमारी दुनिया में व्याप्त है और यहाँ और वहाँ विकसित होता है। कई रूपों में यह उस छोटे बीज की भांति है जो बढ़ता और बड़े वृक्ष के रूप में विकसित होता है। जैसे थोड़ी मात्रा में खमीर सारे आटे को खमीरा बना देता है, यह उस अच्छे बीज की भांति होता जो जंगली पौधों के बीच में बढ़ता और हमें सदैव आश्चर्यचकित करता है। स्वर्ग का राज्य यहाँ हमारे बीच है जो लौट कर आता है। यह नए रूप में विकसित होने हेतु संघर्ष करता है। ख्रिस्त का पुनरुत्थान हर जगह हमें नई दुनिया का बीज बनने का निमंत्रण देता है। यद्यपि उन्हें काट दिया जाता है, वे पुनः बढ़ते हैं, क्योंकि पुनरुत्थान पहले से ही गुप्त रूप में मानव इतिहास के ताने बाने में बना हुआ है, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए व्यर्थ में नहीं है, हम विश्वास को जीने के इस क्रम में किनारों में खड़ा ना रहें। श्रोताओ, क्योंकि हम उन बीजों को हमेशा बढ़ता हुआ नहीं देखते हैं, हमें एक अंतर्दृष्टि को सुनिश्चित करने की जरूरत है, उस विश्वास को कि ईश्वर हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखते हैं, यहाँ तक कि स्पष्ट असफलताओं के बीच भी। यह अमूल्य निधि हम में मिट्टी के पात्रों में रखी रहती है। यह निश्चित रूप में बहुधा एक रहस्य की भावना कहलाती है। यह इस बात को हमारे लिए निश्चित रूप में व्यक्त करता है कि वे जो ईश्वर के प्रेम पर भरोसा करते हुए उन पर आधारित रहते हैं, वे अच्छे फल उत्पन्न करेंगे। यह फलहित होना हमारे लिए बहुत बार अदृश्यमान, मायावी और असंख्यीय होता है। हम अच्छी तरह से यह जान सकते हैं कि हमारा जीवन अपने में फलदायक होगा, इस बात का दावा किए बिना कि यह कब या कहां या कैसे होगा। हम इस बात को लेकर निश्चित हो सकते हैं कि हमारे प्रेम में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होगा, और ना ही हमारे कोई कार्य जिसे हमने निष्ठामय तरीके से दूसरों के लिए किया है। ईश्वर के प्रेम में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होगा, कोई भी उदारतापूर्ण प्रयास अपने में अर्थहीन नहीं होगा, कोई भी दर्द जिसे हमने सहा है अपने में व्यर्थ नहीं जाएगा। ये सारी चीजें हमारी दुनिया को एक महत्वपूर्ण शक्ति की भांति घेरे रहती है। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे कार्य परिणाम रहित हैं, लेकिन प्रेरिताई अपने में एक व्यापारिक लेन देन या पूंजी लगाने की भांति है, यहाँ तक कि एक मानववादी कार्य भी। यह कोई रंगमंच की भांति नहीं है जहाँ हम यह गिनती करने की कोशिश करते हैं कि हमारे विज्ञापन के कारण कितने लोग मंचन में शामिल हुए। यह इससे अधिक गहरा है, जिसे हम सभी मापदंडों के पारे पाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ईश्वर हमारे त्याग के कारण अपनी आशीष को विश्व के दूसरे स्थानों में बरसाते हैं, जहां हम कभी भी नहीं जा सकते हैं। पवित्र आत्मा अपनी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं। वे जब चाहते और जहां चाहते अपने कार्यों को करते हैं। हम अच्छे परिणामों की चाह रखे बिना ही अपने को उन्हें समर्पित करते, जिससे वे अपने कार्यों को हमारे द्वारा पूरा कर सकें। हम इस बात को जानते हैं कि केवल हमारी निष्ठा हमारे लिए जरूरी है। अपने सृजनात्मक और उदारता में समर्पण के बीच हम अपने को पिता के कोमल हाथों में समर्पित करना सीखें। हम उन्हें अपना सारा कुछ अर्पित करें। हम अपने प्रयासों को उन्हें अच्छे समय में फलहित होने की अनुमति प्रदान करें। श्रोताओं, अपने प्रेरितिक उत्साह को सजीव बनाए रखने हेतु हमें पवित्र आत्मा में सुदृढ़ विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यह वे हैं जो हमारी कमजोरियों में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन उदार विश्वास को अपने में पोषित होने की जरूरत है, और इसके लिए हमें चाहिए कि हम निरंतर पवित्र आत्मा का आह्वान करें। वे हमें उन बातों से चंगाई प्रदान करते हैं जो प्रेरिताई प्रयास को क्षीण बनाता है। यह सत्य है कि अदृश्य में यह विश्वास विचलित करता है। यह गहरे पानी में गोता लगाने की भांति है, जहां हमें यह पता नहीं कि हमें क्या मिलेगा। संत पापा कहते हैं कि मैंने स्वयं बहुत बार इसका अनुभव किया है, फिर भी इससे बड़ी और कोई भी स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित होने दें। हमारी परियोजनाओं का परित्याग और हर चीज को विस्तृत रूप में देखने के बदले हम अपने को उनके द्वारा प्रकाशित होने दें, उनके द्वारा संचालित और निर्देशित हों, जहां वे अपनी चाह के अनुरूप जहां चाहे ले चले। पवित्र आत्मा अच्छी तरह जानते हैं कि हर समय और हर जगह कौन सी चीजें जरूरी हैं। रचनात्मक रूप में फलहित होने का अर्थ यही है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के प्रेरितिक पत्र एवंजली गौडियम पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
छोड़ के तुमको अनाथ पावन आत्मा सदा होगा साथ,
पावन आत्मा सदा मेरे साथ, पावन आत्मा सदा मेरे साथ।
जाऊं न छोड़ के तुमको अनाथ पावन आत्मा सदा होगा साथ, पहचानो उसको कर लो विश्वास।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को एक वीडियो कॉल के माध्यम से क्लिंटन वैश्विक पहल को संबोधित किया तथा सदिच्छा रखने वाले लोगों को आमंत्रित किया कि वे आम हित की खोज करें, विशेषकर कमजोर बच्चों की भलाई के लिए। पोप फ्रांसिस द्वारा सोमवार को क्लिंटन फाउंडेशन को दिए गए संबोधन के केंद्र में बच्चे और जलवायु परिवर्तन थे। क्लिंटन ग्लोबल पहल को आगे बढ़ाना जारी रखें। सत्र में अपने संबोधन में पोप फ्रांसिस ने किसी को पीछे नहीं छोड़ने बल्कि सार्वजनिक भलाई में योगदान देने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा जिम्मेदारी के महत्व पर प्रकाश डाला तथा मुलाकात एवं संवाद की संस्कृति का आह्वान किया। वे समाज के सबसे कमजोर सदस्यों खासकर बच्चों के लिए बोल रहे थे। पोप ने सवाल किया कि क्या मानवता इन चुनौतियों से एक साथ मजबूत होकर उभर सकती है, और उन्होंने उदासीनता के वैश्वीकरण पर अफसोस जताया तथा जलवायु परिवर्तन, मानवीय संकट और युद्ध के खतरे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को स्वीकार करने के लिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को धन्यवाद दिया। उन्होंने सभी को व्यक्तिगत मन परिवर्तन और यह समझने का प्रयास करने के लिए आमंत्रित किया कि हम सभी जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनौती को अकेले दूर नहीं किया जा सकता। इस बात को मन में रखते हुए पोप ने हर एक से आग्रह किया कि वे युद्ध का बहिष्कार करें तथा कूटनीति एवं संवाद को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा, यह शांति का रास्ता खोजने का समय है, भाईचारा के लिए बदलाव लाने का समय आ गया है कि हथियार बंद कर दिए जाएं और हम बातचीत एवं कूटनीति की ओर लौटें। संत पापा ने पुनः दोहराया, युद्ध को नहीं, आइए हम एक साथ समय रहते पारिस्थितिक तबाही को रोकें और आप्रवास आपात स्थिति का सामना करें। इसके बाद संत पापा ने वैटिकन के निकट बम्बिनो जेसु अस्पताल के कार्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया एवं संस्था के समर्पण की सराहना की, जिसने बच्चों के चिकित्सा के साथ वैज्ञानिक शोध को जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हालांकि अस्पताल दुनिया के सभी बच्चों के समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन यह गवाही देना चाहता है कि कई संघर्षों के बावजूद बच्चों की देखभाल और जरूरत में लोगों का निशुल्क स्वागत करने के लिए महान वैज्ञानिक अनुसंधान को एक साथ लाना संभव है। विज्ञान और आतिथ्य दो चीजें नहीं है, लेकिन इस स्तर पर वे कम ही बार एक साथ दिखाई देती है। पोप के अस्पताल की विशेषता यह है कि यह यथासंभव अधिक से अधिक बच्चों की देखभाल करना चाहता है, भले ही सभी बच्चों को ठीक नहीं किया जा सके। अंत में संत पापा ने भाईचारा, चिंता एवं स्नेह व्यक्त किया और सभी को निमंत्रण दिया कि वे शांति के रास्ते को अपना सकें एवं भाईचारा के लिए परिवर्तन ला सकें। पोप फ्रांसिस ने मसीले की प्रेरित यात्रा के पूर्व रोम के मरिया मेजर महागिरजा घर जाकर अपनी यात्रा को माता मरियम के संरक्षण में सौंप दिया। फ्रांसिस शहर मसीले की दो दिवसीय यात्रा के पूर्व मंगलवार को संत पापा फ्रांसिस ने रोम के मरिया मेजर महागिरजा घर जाकर माता मरियम से प्रार्थना की। वैटिकन प्रेस कार्यालय के अनुसार संत पापा ने रोम की संरक्षिका माता मरियम के सामने रुककर मौन प्रार्थना की तथा कार द्वारा वैटिकन लौटने से पहले उन्होंने मसीले की यात्रा को माता मरियम को समर्पित किया। पोप ने अपनी प्रेरित यात्रा से पहले मरिया मेजर महागिरजा घर जाकर माता मरियम से प्रार्थना करने की एक व्यक्तिगत परंपरा बना दी है, जो माता मरियम के प्रति भक्ति और उनकी सुरक्षा में यात्रा को सौंपने का चिन्ह है। पोप फ्रांसिस शुक्रवार को दूसरी बेला दक्षिणी फ्रांसिस शहर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वे शनिवार को वापस लौटेंगे। मार्सिले में भूमध्य सागर क्षेत्र की बैठक का तीसरा सत्र शुरू होने के साथ युवा और धर्माध्यक्ष मिलकर एक अंतिम दस्तावेज तैयार कर रहे हैं, जिससे वे शनिवार को पोप फ्रांसिस को प्रस्तुत करेंगे। इस खंडित और घायल समुद्र को आशा की बच्ची कार्य शांति मेल मिलाप और उदारता के स्थान में कैसे बदला जाए पर एक चिंतन किया जा रहा है। यह एक योगदान है जिसे कलीसिया को मसीले में चल रही भूमध्य सागरी प्रक्रिया के माध्यम से देने की उम्मीद है। ऐसे समय में जब ब्रायन कोन से लेकर लंपेदूसा तक आप्रवासन सुर्खियों में है। सभा में युवाओं के साथ भूमध्य सागरी चेहरे को प्रदर्शित करने के लिए पलेर्मो, ट्यूनिस, अलेपो, एथेंस, साइप्रस, ओडेसा, टैंजियर्स और अल्जीरिया के धर्माध्यक्ष शामिल होंगे। 25 से 35 वर्ष की आयु के 70 छात्रों और युवा पेशेवरों की मेजबानी मसीले में परिवारों के द्वारा की जा रही है। वे फ्रांस, बोस्निया हर्जेगोविना, इटली, स्पेन, सीरिया, लेबनान, अल्जीरिया और यूक्रेन सहित भूमध्य सागर की सीमा से लगे 25 देशों के हैं। भूमध्य सागर की पहली बैठक फरवरी 2020 में संत पापा फ्रांसिस की अगुवाई में बारी में हुई थी और उसके बाद दूसरी सभा फरवरी 2022 में फ्लोरेंस में हुई थी, जिसमें पोप फ्रांसिस भाग नहीं ले पाए थे। वैटिकन विदेश सचिव महाधर्माध्यक्ष पॉल रिचर्ड गलाघर ने मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के नए प्रयासों के संदर्भ में पौत्र भूमि के संबंध में वैटिकन की प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला है। वैटिकन पौत्र भूमि में शांति के हर पहल का स्वागत करता है क्योंकि इसे दृढ़ विश्वास है कि इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच एवं आम तौर पर इस क्षेत्र में शांति से पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को लाभ होगा। साथ ही महाधर्माध्यक्ष ने जोर दिया है कि किसी भी शांति पहल को स्थानीय जनता की रक्षा करनी चाहिए और विभिन्न पक्षों की वैध आवश्यकताओं को प्रदान करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के दौरान एक उच्च स्तरीय बैठक में बोलते हुए महाधर्माध्यक्ष गलाघर ने पौत्र भूमि के संबंध में वैटिकन की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया, विशेषकर यीशु के जीवन से संबंधित पौत्र स्थानों के अस्तित्व के बारे में जिन्हें लगभग 800 वर्षों से प्रायर माइनर की देखरेख में सौंपा गया है और जहां 2000 वर्षों से ख्रिस्ते समुदाय की निरंतर उपस्थिति रही है। जिस प्रकार एक नदी अपने आसपास के पर्यावरण के लिए जीवन का स्रोत होता है, उसी तरह हमारी सिनोडल कलीसिया को हमारे आम घर एवं इसके सभी निवासियों के लिए जीवन का स्रोत बनना चाहिए। यह बात संत पापा फ्रांसिस ने 19 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कही। जब दुनिया भर में बेघर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, विंसेंशन परिवार ने 2024 तक 10,000 लोगों को आवास पाने में मदद करने का अभियान जारी किया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।